ये है संयुक्त राष्ट्र रेडियो और मैं हूं महबूब खान, साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के साथ। 21 सितंबर 2018 के इस अंक में शामिल हैं, लड़ाई झगड़े और प्राकृतिक आपदाएं छीन लेती हैं करोड़ों बच्चों से शिक्षा का मौका, करोड़ों बच्चों की मौत हो जाती है ऐसे कारणों से जिन्हें टाला जा सकता है, फिलीपींस में तूफान से लाखों लोग बेघर, हुई भारी तबाही, महासभा की नई अध्यक्ष ने संभाली जिम्मेदारी, जो है अभी तक ऐसी चौथी महिला, और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर सेना की क्रूरता में नजर आए नरसंहार के इरादे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। ये तो हम सभी जानते हैं कि बचपन एक इंसान के वजूद और आकार की बुनियाद होता है, साथ ही बचपन में सही परवरिश और शिक्षा ही उसके भविष्य का रास्ता तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या किया जाए जब लड़ाई झगड़े और प्राकृतिक आपदाएं करोड़ों बच्चों से उनका बचपन और भविष्य दोनों ही छीन लें। इसी वजह से 5 से 17 वर्ष की उम्र के करीब 30 करोड़ 30 लाख बच्चों को स्कूली शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इनमें से करीब एक तिहाई यानी करीब 10 करोड़ 40 लाख बच्चे और किशोर ऐसे देशों में रहते हैं जहां युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं वाले हालात के कारणों से स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती। यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट का नाम है ए फ्यूचर स्टोलन यंग एंड आउट ऑफ स्कूल। इस रिपोर्ट में सभी देशों में प्री प्राइमरी से लेकर अपर सेकेंडरी तक की शिक्षा का आकलन किया गया है। इनमें आपात स्थितियों से प्रभावित देश भी शामिल हैं। यूनिसेफ की अध्यक्ष हेनरिएटा फोर का कहना है कि जब कोई देश लड़ाई झगड़ों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है तो वहां के बच्चों पर दोहरी मार पड़ती है। उनका कहना था कि तात्कालिक प्रभाव तो ये होता है कि या तो उनके स्कूल तबाह हो जाते हैं या सेना या सुरक्षा बल उन पर कब्जा कर लेते हैं, यहां तक कि बहुत से स्कूलों पर तो जानबूझकर हमले किए जाते हैं। इन कारणों से लाखों करोड़ों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि एक बार शिक्षा से बाहर होने के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि भविष्य में फिर से औपचारिक शिक्षा हासिल कर पाए। हेनरिएटा फोर का कहना था कि दीर्घकालीन असर ये होते हैं कि इन बच्चों के इस तरह अशिक्षित रह जाने के बाद खुद उन्हें और उनके देशों को गरीबी का कुचक्र देखना पड़ता है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों में गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और ज्यादा धन निवेश करने का आह्वान किया गया है ताकि ये बच्चे और किशोर एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा हासिल कर सकें। अगर सीधे या आसान शब्दों में कहें तो कहा जाएगा कि दुनिया भर में हर 5 सेकंड में एक बच्चे की मौत ऐसे कारणों या बीमारियों से हो जाती है जिन्हें रोका जा सकता है। एक ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि पिछले वर्ष 15 वर्ष से कम उम्र के करीब 63 लाख बच्चों की मौत ऐसे ही कारणों से हो गई। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का नाम है न्यूबॉर्न बेबीज अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द डेथ्स। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग और विश्व बैंक ने सोमवार को जारी किया। यूनिसेफ के रिसर्च डायरेक्टर यानी शोध निदेशक लॉरेंस चैंडी का कहना था कि एक तसल्ली की बात यह है कि रोके जा सकने वाले कारणों और बीमारियों से बच्चों की मौतें रोकने के प्रयासों में बड़ी कामयाबी पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान हासिल हुई है। 1990 के बाद से इन मौतों की संख्या करीब आधी हो गई है, लेकिन अब भी लाखों बच्चों की मौत इसलिए हो जाती है कि वो कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ है। सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र के देशों में रहने वाले बच्चे बड़े पैमाने पर इन कारणों और बीमारियों से प्रभावित होते हैं। दुनिया भर में 5 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चों की मौत होती है उनके आधे सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र के देशों में होते हैं। कुल संख्या का करीब एक तिहाई हिस्सा दक्षिण एशियाई देशों में बसता है। लॉरेंस चैंडी का कहना था कि अगर यही चलन जारी रहा और तुरंत ठोस उपाय नहीं किए गए तो अब से लेकर 2030 तक 5 साल से कम उम्र के करीब 5 करोड़ 60 लाख नौनिहालों की मौत हो जाएगी। उनमें से करीब आधी संख्या नवजात शिशुओं की होगी। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें और कोई बीमारी होने पर समय पर असरदार दवाई उपलब्ध कराने, स्वच्छ पानी के इस्तेमाल, बिजली आपूर्ति और बीमारियां रोकने वाले टीके समय पर लगवाने यानी वैक्सीनेशन से हम इनमें से हर एक बच्चे के हालात बदलने की क्षमता रखते हैं। 5 साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चों की मौतें न्यूमोनिया, मलेरिया और जन्म के समय होने वाली जटिलताओं से होती हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इन्हें या तो होने से रोका जा सकता है या बीमारियां हो जाने पर उनका प्रभावशाली इलाज किया जा सकता है। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण उनका किसी घटना में घायल होना बताया गया है। इनमें ज्यादातर मौतें सड़क दुर्घटनाओं या पानी में डूबने से होती हैं। ये मामला इतना गंभीर है कि देशों के भीतर भी बहुत बड़े अंतर, भिन्नताएं और असमानताएं पाए जाते हैं। अनेक देशों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में 50% तक ज्यादा होती है। इसके अलावा शिक्षा इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अशिक्षित महिलाओं के बच्चों की 5 साल से कम उम्र में ही मौत हो जाने की संभावना उन महिलाओं के बच्चों के मुकाबले 2 गुनी ज्यादा होती है जो सेकेंडरी या उच्च शिक्षा हासिल किए हुए होती हैं। विश्व बैंक में स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या मामलों के वरिष्ठ निदेशक टिम इवांस का कहना था कि होने से रोकी जा सकने वाली बीमारियों की वजह से इन मौतों को रोकने और बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में और ज्यादा धन खर्च करने से देशों की ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संपदा मजबूत होती है। ये स्वस्थ मानव संपदा किसी भी देश की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली और अच्छा भविष्य बनाने में सक्षम होती है। फिलीपींस में पिछले सप्ताह शनिवार को शुरू हुए मंखूट नामक तूफान ने करीब 10 लाख लोगों को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता एजेंसियां फिलीपींस की सरकार और अन्य संगठनों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय हो गई हैं। इस तूफान ने पूरे देश में करीब 6,500 मकान तबाह कर दिए हैं और करीब 1,48,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा से खेतीबाड़ी और जीविका के अन्य साधनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अनुमान है कि खेतीबाड़ी को करीब 26.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया है। कृषि पर आधारित लगभग 2,81,000 परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने और जानकारी देते हुए बताया,
The United Nations and our partners are working closely with the government to coordinate rapid assessment and response. Major needs include food, healthcare, water, sanitation and hygiene and shelter.
संयुक्त राष्ट्र और साझीदार संगठन सरकार और अन्य संगठनों के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं और नुकसान और जरूरतों का आकलन बहुत तेजी से किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को इस समय सबसे पहले तो खाने पीने की चीजों, स्वास्थ्य की देखभाल, पानी, साफ सफाई के साधनों और रहने के सुरक्षित ठिकानों की सबसे ज्यादा जरूरत है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने करीब 1,66,000 प्रभावित परिवारों को करीब 1,000 मैट्रिक टन खाने पीने का सामान भेजने का इंतजाम किया है। संयुक्त राष्ट्र इस नाजुक वक्त में फिलीपींस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हर मदद करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक के शब्द। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी OCHA का कहना है कि इस तूफान की वजह से चीन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी भारी बाढ़ आ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की नई अध्यक्ष मरिया फर्नेंडा एस्पिनोसा ने कहा है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान विश्व संस्था को लोगों के और ज्यादा नजदीक लाने के लिए कार्य करेंगी। मंगलवार 18 सितंबर को शुरू हुए महासभा के 73वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस विश्व संस्था को लोगों का समर्थन और ज्यादा बढ़ाने और इससे लोगों के लगाव को मजबूत करने के लिए भी प्रयास करेंगी। 193 सदस्यों वाली महासभा को उनका ये पहला संबोधन था जिसमें उनका कहना था कि मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुलवाद यानी सहकारिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा वैश्विक नेतृत्व की जरूरत है। इससे शांतिपूर्ण, समतापूर्वक और टिकाऊ समाज बनाने में मदद मिलेगी और ये उनके कामकाज के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। मरिया फर्नेंडा एस्पिनोसा का कहना था, आइए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां लोग ज्यादा बराबरी महसूस कर सकें और लोगों को ज्यादा स्वतंत्रताएं हों, जो ज्यादा टिकाऊ हो और जहां प्रकृति के लिए ज्यादा सम्मान हो, एक ऐसा जहां जिसमें सभी इंसानों के लिए जगह हो और जहां सभी लोग एक दूसरे के लिए सहयोग वाला मिजाज रखते हों। महासभा को संबोधन में उन्होंने अपनी 7 प्राथमिकताएं गिनाई, जिनके जरिए वो सदस्य देशों के साथ राय मशवरा करके साल भर तक चलने वाले 73वें सत्र को आकार देने की कोशिश करेंगी। इनमें पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देना, प्रवासियों और शरणार्थियों की समस्याओं और तकलीफों को समझकर हल निकालने का लक्ष्य रखने वाले नए कार्यक्रम ग्लोबल इम्पैक्ट को समर्थन देना, कामकाज के सम्मानजनक माहौल की हिमायत करना, पर्यावरण की हिफाजत करना, विकलांगों के अधिकारों और सम्मान सुनिश्चित करने पर ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया को समर्थन देना और बातचीत व सुलह सफाई की संस्कृति को आसान बनाना शामिल होगा। मरिया फर्नेंडा एस्पिनोसा जून में इस पद के लिए निर्वाचित हुई थी और उन्होंने 72वें सत्र के अध्यक्ष रह चुके मिरास्लोफ लेशाक का स्थान लिया है। महासभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाली वो इस विश्व संस्था के पूरे इतिहास में 4थी महिला हैं, साथ ही लातिनी अमरीकी और कैरिबियाई क्षेत्र से इस पद पर बैठने वाली पहली महिला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने भी महासभा को संबोधित किया। महासचिव का कहना था, हमें बहुत से लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी होगी। इनमें शांति अभियानों, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता यानी जेंडर पैरिटी लागू करने, 2030 के टिकाऊ विकास एजेंडा के लिए धन जुटाने, दुनिया भर के युवाओं को ज्यादा सक्षम और सशक्त बनाने, गरीबी दूर करने और लड़ाई झगड़े खत्म करने और बहुत से अन्य मुद्दे शामिल हैं। अंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले उच्च स्तरीय सत्र में शिरकत करने का आह्वान करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने के लिए कमर कसने के लिए तैयार हो जाएं। महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि महासभा को एक साथ काम करने यानी सहकारिता की संस्कृति और माहौल को सच करके दिखाना होगा। उन्होंने इस मुहिम में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और खुद के समर्थन का भरोसा भी दिलाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जिनेवा में हुई एक बैठक में म्यांमार में रोहिंग्या लोगों के साथ हुई क्रूरताओं का विस्तृत वर्णन पेश किया गया है, जो न सिर्फ रोहिंग्या समुदाय के मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन की दास्तान बयान करता है, बल्कि इंसानियत को तार तार कर देने वाला है। अगस्त 2017 में म्यांमार के रखाइन स्टेट में सेना और सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या समुदाय को व्यापक हिंसा का निशाना बनाना शुरू किया था, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षा के लिए बांग्लादेश भागना शुरू कर दिया था। अब तक करीब 7.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक जांच दल बनाया था, जिसके मुखिया मरजुकी दारुस्मन ने मानवाधिकार परिषद के सामने कुछ ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की सेना द्वारा की गई क्रूरताएं इस हद तक अमानवीय रही हैं कि उनका कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं मिलता। म्यांमार की सेना को तत्मदाव भी कहा जाता है। मरजुकी दारुस्मन ने मिन जी नामक एक गांव पर म्यांमार की सेना द्वारा किए गए एक हमले का ब्यौरा दिया, जो दिल दहला देने वाला था। इस गांव को तुलातोली भी कहा जाता है।
Without notice, Tatmadaw soldiers entered by land, opening fire and burning houses. All the Rohingya houses and structures in Minji were burned to ashes. All its inhabitants were fled or were killed. Lists.
बिना कोई चेतावनी या सूचना दिए तत्मादाव सैनिक जमीनी रास्ते से दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, घरों को आग लगा दी, गांव में रोहिंग्या लोगों के तमाम मकानों और वहां मौजूद किसी भी तरह के ढांचों को जलाकर राख कर दिया। उस गांव में रहने वाले सभी लोग या तो भाग गए या उन्हें मार दिया गया। रोहिंग्या समुदाय के कार्यकर्ताओं द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई सूची में करीब 750 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्हें उस दिन मार दिया गया। इनमें पुरुष, महिलाओं और बच्चे सभी थे। म्यांमार के लिए बनाए गए जांच दल के मुखिया मरजुकी दारुस्मन का ब्यौरा। मानवाधिकार परिषद को दिए ब्यौरे में उन्होंने कहा कि म्यांमार की सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां साफ तौर पर जेनोसाइड इंटेंट यानी नरसंहार के इरादे साबित करती हैं। उनका कहना था कि इनकी जांच अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल में होनी चाहिए। म्यांमार ने इस जांच दल की 440 पेज की रिपोर्ट की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द कर दिया है। तो यह था साप्ताहिक समाचार बुलेटिन संयुक्त राष्ट्र रेडियो से। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।